इसी वजह से अब दोबारा अब देख रहे हैं ना, गज़वे उहद का तबसरा है, बीच में एक बात अखलाकियात की, फिर वाक़या, अब दोबारा अल्लाह ताला हमें ज़हनी तौर पे मैदान उहद में लेके जा रहा है। अवलम्मा साबतकुम मुसीबतुन, क्या और जब कभी, ये तीन लफ्ज़ हैं, इस पे भी गौर कर लीजिए। आ कहते हैं क्या को, हमज़ा इस्तफ़हाम का सवालिया अंदाज है, वो कहते हैं अतफ को, क्या और लम्मा जब कभी, यानी अल्लाह ताला कहते हैं क्या जब कभी असाबत को मुसीबतुन, पहुंच गई तुमको मुसीबत। यहाँ असाबत में जो ता है ना, ये तानीस की है, मुअन्नस की है, क्योंकि आगे मुसीबतुन आ रहा है कि जब कभी भी तुमको मुसीबत पहुंची। इशारा है इधर किस मुसीबत की तरफ, गज़वे उहद की भगदड़, 70 का शहीद होना, मुसलमानों का आपस में इख्तलाफ, अल्लाह के नबी के बारे में ये सोच लेना कि आपने खयानत की, ये सारी मुसीबत तुम्हें पहुंची थी। तो क्या हुआ, कद सब तुम मिसलईहा, इससे पहले तुम पहुंचा चुके दुगना। ये लफ्ज़ मिसलईहा को आप तजवीद के नाते से ज़रा शऊर से पढ़िएगा, क्योंकि बाद दफ़ा मिसलीहा आ जाता है, अमूमन मिसली होता है, लेकिन ये असल में मिसलईन था, तस्निया है ये, नून गिर गया मुजाफ की वजह से तो मिसलईहा रह गया। कहा तुम तो इससे दुगनी ले चुके, दे चुके, इसमें किसकी तरफ इशारा है? आप में से जो इसका जवाब दे मुझे बहुत खुशी होगी, कि वाकई वो पूरी आयतों को साथ लेके, कितनों को समझ आई है, हैंड रेस करें। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लोगों को समझ आ गई है, शाबाश, वेरी गुड, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। कि अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या हुआ, आज तुम्हारे 70 मरे हैं तो तुम वहाँ दुगने दे चुके नुकसान, वो कैसे कि बदर के मैदान में कुफार के 70 मारे भी गए थे और 70 को कैदी बनाया गया। कहा क्या हुआ, कल तुम दुगनी दे चुके तो आज क्यों लड़ते हो, क्या हो गया? अब आज तुम्हें शिकस्त हुई, गज़वे उहद में मैदान तुम बराबर पे ले आए, तो कुल तुमने कहा अन्ना हाजा, कहाँ से है ये अन्ना हाजा का इशारा किसकी तरफ है, शिकस्त, कि ये उहद की शिकस्त कहाँ से आ गई, हम तो नबी के साथ निकले थे, ये शिकस्त क्यों हो गई, तुम्हें बड़ी हैरत हुई इसके ऊपर। अब देखिए कि जब कोई गिरोह घर से ये सोच के निकलता है ना कि मैं फतेह मंद होने के लिए जा रहा हूँ, सक्सेसफुल होने के लिए जा रहा हूँ, फिर जब उनको कहीं नाकामी उठानी पड़ती है ना, शिकस्त होती है, तो वो उसको कबूल नहीं करते, वो कहते नहीं ये कैसे हो गया। नबी के साथ जाने वालों के दिल में दो ख्याल आए, नंबर एक, हम हक पे हैं, हमारे पास अल्लाह का दीन है और कुफर जो है वो बातिल पे है, दूसरी बात कि अल्लाह का नबी हमारे साथ है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अल्लाह का नबी भी हो और हम हक पे हों, अल्लाह के रास्ते में निकले और हम हार जाएं, ये सोच कब पैदा होती है। असल में ये भी एक किस्म की खुद पसंदी है, थोड़ा सा इसका भी बात करके फिर आगे साथ साथ आयत को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। देखिए कि फतह या शिकस्त ये मोमिन का गोल नहीं, लिख लें, इस दुनिया में हमें फतह मिले कि ना मिले ये हमारा गोल नहीं है। जब कोई ये सोच लेता है ना कि अगर फतह हुई तो मैं सच पे हूँ, हक पे हूँ, और शिकस्त हो गई तो इसका मतलब मैं फेल हूँ, मैं नाकाम हूँ, तो समझ ले कि वो फतह परस्त तो हो गया, हक परस्त नहीं रहा। अल्लाह ताला ने यहाँ बिल्कुल तस्किया कर दिया कि क्यों तुमसे ये शिकस्त कबूल नहीं हो रही, क्या हो गया, मोमिन का अजर तो आखिरत में है, दुनिया की कामयाबी तो एक बोनस है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, मिल जाए वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो क्या हुआ, फतह को गोल नहीं बनाना, ना मिले तो दीन पल से पलट जाएं। बस लोग किसी की कामयाबी का मेयार क्या समझते हैं, इसके साथ कितने लोग हैं, इनके कितने काम करने वाले लोग हैं, इनके कितने मेंबर हैं, तो याद रखिए ये नफरी में नहीं पड़ना, हक के रास्ते में काम कीजिए, हो गया, ना हो सका तो क्या हुआ। अल्लाह ताला की मदद बंदे के साथ कब होती है, जब तक बंदे की असल निगाह क्या होती है कि मुझे अपना हिस्सा डालना है, फ़ायदा हो, हो ना हो, ना हो, वो दुनिया की नाकामी से सबक तो लेता है लेकिन बददिल नहीं होता। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ साफ बता दिया कि क्या हुआ, कुल तुमन्ना हाजा, ये कहाँ से हो गई शिकस्त, तो इनको बताओ, कुल हुआ मैंने इन दी अनफुसिकुम, ये तुम्हारे ही हाथों का किया धरा है, ये तुम्हारे अपने नफ्सों की बात है, तुम्हारी ही कोई खता होगी जिसकी वजह से ये भगदड़ मची, इतनी गलत फहमियाँ पैदा हो गई, शिकस्त हुई तो क्या हुआ, कल फतह हो जाएगी, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। کیوں غم کرتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، اور جو کچھ تم کو پیش آیا اس دن جس دن دو جماعتیں ملی تھی، تو یہ اللہ کا اذن تھا، اللہ کا حکم تھا. کیوں پیش آیا؟ وليعلم المؤمنین، اسی بات کا اعادہ ہے جو پیچھے ہوئی، تاکہ اللہ سچے ایمان والوں کو دیکھ لے کہ کون دنیا کی فائدے کو دیکھ رہا ہے یا کون آخرت کے اجر پہ ایمان لا رہا ہے. اور وليعلم الذين نافقوا، اور ان کو بھی دیکھ لے جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہے. ایسے لوگوں کا حال کیا ہے؟ وقیل لهم، اور جب کہا گیا ان سے، تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑائی کرو اللہ کے راستے میں، نکلو آگے بڑھو، اب ادفعو، یا دشمن کو دور کرو، یعنی یا اوفنسو وار کرو یا ڈیفنسو کرو، یا خود لڑو یا کوئی تم سے لڑے تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ ان منافقوں نے، لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے لڑائی کرنا، یعنی اگر ہمیں لڑنا آتا تو لتبعناکم، تو ہم ضرور آپ کی پیروی کرتے. اس جملے کو تھوڑا سا لکھ لیں کہ یہ زو معنی جملہ ہے، انشاءاللہ تفصیل میں بتاتی ہوں، ابھی آیت کو پورا کر لیں. یعنی ان کا یہ جملہ کہ اگر ہمیں لڑنا آتا تو پھر ہم بھی لڑتے، ہمیں تو آتا ہی نہیں، ہمیں تو آتا ہی نہیں یہ کام کرنا، ہم کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا جملہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت. اللہ اکبر، یعنی ایمان لائے ہوئے تھے، یہاں نفاق آ گیا دل میں، اس لیے اس طرح کی چوٹیں دینے والی، تنقید کرنے والی، طنز والی بات کرنے لگے. لیکن فکر نہ کرو، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ جو باتیں منہ سے کہتے ہیں ان کے دلوں میں ایسا نہیں ہے، یعنی الحمدللہ دلوں میں ایمان موجود ہے، یہ تو ایک وقتی شکست نے ان کے ہوش گم کر دیے. تو واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا چھپا رہے ہیں. یہاں اور اسے اگلی آیت میں بھی، اب تھوڑی سی اس پہ اوور آل بات کروں گی، کہ ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے سے کہ احد کے اندر شکست ہو گئی. اب جب شکست ہوتی ہے نا تو بہت کچھ گڑبڑیں شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو پیچھے بھی مثال دی تھی کہ گاڑی سموتھ چلتی رہتی ہے تو سب ڈرائیور کو کچھ نہیں کہتے، اچھا ہے کہ نہیں اچھا، ذرا جھٹکا لگتا ہے نا تو سب کہتے ہیں دیکھ کے چلاؤ، اتنی سپیڈ کی کیا ضرورت تھی. ہاں بالکل اسی طرح ہوا، جب کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے اجتماعی کاموں میں یا ملت کے کاموں میں دنیاوی لیول پہ کہ کوئی معاملہ بگڑ جائے، تو پھر لوگوں کے اندر مختلف رائے شروع ہو جاتی ہیں، دل پھٹنے لگتے ہیں، کوئی کہتا ہے تمہارا قصور تھا، کوئی کہتا ہے تمہارا تھا. پھر وہ 35 لوگوں کو گلٹ بہت تھا کہ ہائے ہائے ہم نے کیوں جگہ چھوڑی، ہم ایسا نہ کرتے تو اتنے نہ مرتے. اللہ تعالیٰ اب لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں کہ کیا ہوا، کیوں شکست اور فتح میں کھو چکے ہو، چھوڑ دو. اصل بات کیا ہے کہ نبی کا حکم مانو، کیونکہ نبی کا حکم مان کر شکست بھی ہو جائے تو کوئی غم کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، جان چلی گئی نا کوئی بات نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن معاملہ کہاں بگڑتا ہے کہ نبی کا حکم نہ مان کر اگر فتح بھی ہو جائے تو یاد رکھو وہ فتح فتح نہیں، فائدہ نہیں ہوگا. جان بچا لی تم نے نبی کے حکم مان کر، کوئی فائدہ نہیں. وہ عزت جو اللہ کے رسول کی بات کو نہ مان کر ملے اس کو کیا کرنا ہے؟ تم دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، دنیا سے اوپر اٹھ کر اطاعت کے لیے کام کرو. اللہ کے نبی نے تمہیں جو کہا تم نے کیا، نہیں کیا غلطی ہو گئی، ایڈمٹ ہو گیا، بات ختم. اب اس پہ کیوں اپنے آپ کو جلاتے اور کڑتے ہو؟ اور ایسی چیزیں اصل میں مقصد سے دور کر دیتی ہیں. دیکھیے جب بندہ منزل پہ جانے کے بعد منزل کی بجائے سائڈ پہ نکل جاتا ہے نا، سائڈ ایشوز اتنے اہم ہو جائے کہ مین پرپس ختم ہو جائے، تو پھر اسی طرح انسان صراط مستقیم سے اتر جاتا ہے. گھر سے نکلے تھے اسلام کو غالب کرنے کے لیے، یہی مقصد تھا نا. اب آپ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنی اپنی جگہ دے دی، سب بیٹھ گئے، اب کیا ہوا؟ جو ہونا تھا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ 70 لوگ مارے گئے، حضرت حمزہ بن شہید ہو گئے. آپ بتائیے کہ کیا حضرت حمزہ کو اس وقت یہ پتا تھا کہ میری زندگی کے بعد اسلام کتنا غالب ہوگا؟ نہیں پتا تھا نا، انہوں نے اپنی جان دی ختم، تو کیا حضرت حمزہ کو شہادت کا اجر نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا. کیا اللہ ان کے اجر کو ضائع کر دے گا؟ قطعاً نہیں کرے گا. بالکل یہی کیفیت آج کے دور میں ہم کوششیں کرتے ہیں، چھوٹی موٹی جو ہماری اوقات ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے. بظاہر ہم کہتے ہیں کچھ فائدہ تو نہیں دکھ رہا، इतने काम हो रहे हैं दीन के, इधर उधर इस्लाम गालिब नहीं हो रहा, कुफर फैल रहा है, करप्शन फैल रही है, बेहयाई फैल रही है, तो आप गम ना करें, ये मेरे और आपके करने का काम नहीं है। हमने काम शुरू किया है, कोशिश की है ना, इससे अच्छा नतीजा निकले, फ़ायदा हो ना हो, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, आंखें ठंडी होती हैं इस्लाम को गालिब होता देखकर, हो सकता है 1-2 सदियों तक मुसलमानों की यही हालत चले, लेकिन याद रखिए, अल्लाह से पुरउम्मीद रहिए, इस्लाम गालिब होगा, इस्लाम दबके नहीं रहेगा। हमारा काम क्या है कि अपना हिस्सा डाल दें। मिसाल है, हम कोशिश कर रहे हैं ना, यानी ये कुरान पढ़ रहे हैं, आप सब अपनी इतनी कीमती ज़िंदगी में से इतना कीमती वक्त निकाल के बैठे हैं, हमें उम्मीद तो ये है ना कि इसके बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि अपनी ज़िंदगी में भी चेंज लाएं और दूसरों को भी ले आएँ। बिलफर्ज़ अल्लाह ना करे कभी ये सिलसिला यहीं बंद हो जाए, ठप कर दें, तो क्या ख्याल है, इस कोशिश का अजर ज़ाया होगा, कल ज़्यादा अजर होगा। जो अल्लाह के रास्ते में मार दिए जाते हैं, जिनको तबाह व बर्बाद कर दिया जाता है, वो तो अपनी जानें देकर सुरखरू हो जाते हैं कि अल्लाह आखिरी कतरा भी बहा दिया, कोशिश कर ली। हमारा काम क्या है, कोशिश करना, जो काम करें आखिरत के लिए करें, बाकी सारे मामलात अल्लाह के हवाले। ए अल्लाह, ये काम क्यों करना है, क्योंकि मेरी आखिरत अच्छी हो जाए, मैं तेरे लिए ये काम कर रही हूँ, बस तू मुझसे राज़ी हो। दूसरी बात, अगर कोई कुर्बानी मैंने आज की है ना अल्लाह के लिए, तो अल्लाह मुझे यकीन है तू ज़ाया नहीं करेगा। और तीसरी बात है कि अच्छा, अगर मैं तो आधे काम से फौत हो गई, ख़त्म हो गई, तू मेरे लिए दूसरों को सदका जारिया बना दे। जब तक मुसलमानों की ये सोच थी ना, तो इस्लाम फैलता रहा। हमने नतायज पे नज़रें रखी, आज का दौर ही है, छोटे बच्चे को कहते हैं फर्स्ट आए, सेकेंड आए, थर्ड आए, ग्रेजुएशन डे मेरे हल शादी के दिन से भी ज़्यादा अहम हो गया आज के दौर में। लोग नंबरों के बारे में इतने कॉन्शियस हो गए कि अमल है नहीं है, नंबरों पे लड़ेंगे, आधे आधे नंबर पे दिल छोटे होते हैं, इवन कुरान पढ़ने के बाद भी, पढ़ाने के बाद भी, इन सब से ऊपर उठ जाए। मैं तो इस वक्त अपने आप को इस आयत के सामने फिट करती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर हमें किसी काम का मौका दिया, कोशिश कर ले, बंदा अल्लाह की निगाहों में सुरखरू हो जाए, उसके बाद हुआ हुआ, काम नहीं हुआ तो अल्लाह की मर्ज़ी। ये जो जुमला है ना, अब इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे, मुनाफिकों का जुमला है, और वो क्या है, लौ नालमुल किताल, अगर हम जानते लड़ना तो लत्तबानाकुम, हम तुम्हें ज़रूर मदद करते तुम्हारी। ये जुमला किनका है, तफसीर में आता है कि ये जुमला उन लोगों का है जो अब्दुल्ला बिन उबई के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ के जा रहे थे। दूसरे लोगों ने उन्हें कहा, भाई तुम्हें क्या हो गया, क्यों जा रहे हो? तो कहने लगे कि जी देखो, हमें तो लड़ना वड़ना आता कोई नहीं, तो ज़रूरत कोई नहीं जाने की, फ़ायदा क्या है, छोड़ देते हैं, हम इधर से ही चले जाएं। यानी इस जुमले में तंज था, उन्होंने तंजिया ये बात कह दी। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाती हूँ कि वो कोई ये सोच नहीं रहे थे, बल्कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ख़ानदान में कोई बात होती है, हर बंदा अपनी राय दे रहा है। अब किसी एक ने अपनी राय दी, नहीं मानी गई, तो वो कहता है हाँ जी हम तो हैं ही बेवकूफ़। आप बताइए, जब बंदा इस टोन में बात करता है तो क्या वो खुद को बेवकूफ़ समझ रहा होता है? नहीं, वो ये समझ रहा होता है कि हमें तुझी बात ही नहीं आती। इन्होंने कहा, चूँकि आपने हमारा मशवरा नहीं माना, हमने कहा था मदीना में रहो, आप चल पड़े बाहर, लिहाजा बस हमें तो ज़रूरत ही नहीं। और ये गिले का अंदाज़ था, शिकवे का अंदाज़ था, बदगुमानी का अंदाज़ था, इनको ये बात कहनी जेब नहीं देती थी। एक तो इसका ये मानी बनता है, दू मानी का मतलब होता है दो मानी, एक दूसरा भी इसका मानी तफसीर में, और वो क्या कहते थे, ये कोई जंग है? देखो ज़रा 700-800 निकले हैं और आगे 3000 है, इन सब ने मर मरा जाना है, ये तो खुदकुशी है। लो, इतनी सी कोशिशों से भला मुसलमानों को फ़ायदा होगा, घर बैठो, नतीजा क्या होगा कि ये भी मर जाएंगे। यानी उनका ख्याल था कि नऊज़ बिल्ला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बाती हैं, उनका ये कदम बहुत बड़ा कदम है, अभी सिर्फ 1 साल हुआ है मक्का से मदीना आए हुए, अभी तो कई मसाइल है और ये जंगे लेने लग पड़े, ये इधर लड़ रहे हैं उधर लड़े हैं, ये कोई जंग नहीं। आज के दौर में भी लोग ऐसे जुमले बोलते हैं, मसलन जब आप पढ़ने पढ़ाने बैठते हैं ना, तो लोग कहते हैं आपकी पढ़ाई से क्या ख्याल है, इस्लाम को कोई फ़ायदा होगा? बाज़ लोग नमाज़ें पढ़ते वालों को देख के क्या कहते हैं, लो अब भला तुम्हारी नमाज़ों से कुछ होना है? यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों की ये बातें हिम्मत तोड़ने की हैं, लेकिन तुम अपना दिल ना तोड़ो, इसलिए कि तुम्हारी नज़र तो इस चीज़ पर है कि मैंने अपना काम करना है, तो लिहाजा अल्लाह ताला आप कहते हैं इनको कि इनके ऊपर इन बातों पर ना पढ़ो। हम लिल कुफ्र यौम इज़ नक़रब मिनहुमुल ईमान, इससे क्या पता चलता है कि ईमान के बावजूद कभी कभी बंदा कुफ्र के करीब पहुंच जाता है। और ख़ास तौर पे एडवर्स कंडीशंस में एक चीज़ बिगड़ती है ना, हर चीज़ बिगड़ी हुई दिखेगी। बस आप देखिए कि जिनकी शुगर का लेवल तेज़ होता है ना, तो मैंने सुना है अल्लाह ताला महफूज रखे सबको, और जिनका होता है अल्लाह उनको बचाए, उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। हाँ, उनका और क्या क्या होता है, ब्लड प्रेशर शायद कभी हाई हो जाता है, कभी लो होता है। एक एंगल बिगड़ता है ना, सब चीज़ें टेढ़ी दिखती हैं। जैसे गाड़ी का कोई एक पुर्जा अपनी जगह से हिल जाए ना, आपको सब कुछ टेढ़ा दिखेगा। बस उस एंगल को सीधा कर लो, जहाँ से टेढ़ शुरू हुई है ना उसको सीधा कर लो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि ये कभी कोई ओवरनाइट चेंज नहीं आता कि एक दिन एक चीज़ ऐसी है तो दूसरे दिन दूसरी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि यकूलू नबी अफवाहें मा लैसा फी कुलूबिहिम, ये बस ऊपर ऊपर की बातें। इसको फिर दो रंग में लेंगे, अगर वाकई ये जुमला निफाक वालों के लिए तो मुराद क्या कि इनके दिल में है खोट, और बातें ऊपर से करते हैं इस्लाम की, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। याद रखिए, जो बात ऐसी होती है वो दिल में नहीं जाती, जो बात दिल से निकलती है दिल पे असर करती है। इनका ये जुमला, इसीलिए इनकी बात में कोई असर नहीं था क्योंकि इनका उस पर अमल नहीं था। दूसरा ये जुमला अगर हम सोचे मुखलसीन का, कि जिनसे ख़ता होगी कोई बात नहीं, इंसान है ना। अब देखिए, इंसान चलता है, रास्ते में पाँव पे मट्टी पड़ी, आप कहते हैं हाय पाँव गंदे हो गए, तो क्या हुआ, क्या करें, रुक जाएं? नहीं, और चलें। जब चलेंगे ना वो मट्टी झड़ जाएगी। इसी तरह इंसानों के मामलात में भी होता है। तो फिर ये जुमला क्या है कि कोई बात नहीं, अल्लाह के नबी ये ऊपर से आपको ऐसी बातें कह रहे हैं कि आपने गुल कर लिया, आपने चादर चुरा ली, और आपके ऊपर यानी हमें ये शक है, लेकिन गम ना करो, इनके दिल में कोई खोट नहीं, ये वक्ती बातें हैं। और हकीकत में ऐसा हुआ कि जब सहाबा कराम को होश आई तो फिर फूट फूट के रोए, गले लगे। एक ऐसा मौका है, पीछे पड़ चुके ना, यहूदी ने लड़ाने की कोशिश की थी औस और खजरज के लोगों को, शमास बिन कैस उसका नाम था, तो उसने जाके जंगे बॉस का किस्सा शुरू कर दिया। बस वही सहाबा जो शीर व शक्कर थे, एक पार्टी में बैठे हुए थे, वो शुरू हो गए, अच्छा तुम्हारे बाप दादा मेरे, जंग की बातें कहेंगे, अच्छा फिर लड़के दिखाते हैं, हर्रा हर्रा, मैदान भी मार लिया गया, अल्लाह के नबी तक बात गई, आपने आके वहाँ समझौता कराया, आपने कहा तुम्हें क्या हो गया, अभी तो मैं मौजूद हूँ, अभी तो तुम्हें बहुत दिन नहीं हुए इस्लाम में आए हुए, तो फिर कुफर पे जाते हो। बस होश आया, फिर आंसू पड़े, और वही साहबी जो अभी तलवारें हाथ में लेके बैठे थे वो गले मिल के फूट फूट के रो रहे थे। क्या आपको खानदानों में कभी ऐसी कोई रंजिशें नहीं दिखी? भाई बहन के दिल में होता है, और जब फिर मिलते हैं तो उससे ज़्यादा अल्लाह की रहमत से मोहब्बत होती है। शोहर बीवी के दिल में कई बार ऐसी रंजिशें आ जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मट्टी डालो, ये कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए कि तुम्हारा मकसद दुनिया नहीं, तुम अपने आप को आगे देखो कि तुम किसी काम को करते हो तुम्हें उससे क्या फ़ायदा होता है। हाँ, बाकी रह गई बात कि अगर इनका ये ख्याल है ना कि मैदान जंग में जाने से मौत आती है, तो इनका फिर मामला क्या है, आयत 168 को देखेंगे। अल्लज़ीना क़ालू, वो लोग जिन्होंने कहा, ये कौन है, पीछे रहने वाले मुनाफिक जो थे, किनको कहा, लिअख्वानिहिम, अपने भाइयों को कहा। कौन है यहाँ भाई, उनके हम ख्याल लोग, मुराद है कि जिनके दिल में खोट था। क्या कहा, वक़ादू, और आप बैठ रहे, यानी खुद बैठे हुए हैं, लौ अताऊना मा कुतिलो, अगर ये हमारी बात मान लेते तो ना मारे जाते। इनको क्या कहो, कुल फदरऊ अनफुसिकुमुल मौत, आप इनसे कह दो कि अपने नफ्सों से मौत को हटा लो। बताइए ये फदराउ का लफ्ज़ पहले कहाँ गुजरा है, इस पे भी बहुत खुशी होगी जी। आप खालद जी, शाबाश, कोई बात नहीं, ऐसे हल्का सा बता दें कहाँ, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, फदारा तुम, गाय के वाक्य में हुआ था कि पहले कत्ल हो गया, फिर सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लगे, तुमने कत्ल किया, वही लफ्ज़ है, हटाने का मानी है, दर उन दाल रहा, हमज़ा इसका रूट होता है। कहा अच्छा, तुम समझते हो मैदान जंग में जाने से मौत आती है, और अपने साथियों को कहते हो कि बैठे रहो, बातें करो, करते हैं, घर बैठ गए और बातें करने लगे। क्या कहा, लउ अताउना, अगर ये हमारी बात मानते, कौन, ये जो ओहद के लिए निकल गए, यानी ये उन लोगों का कॉल है जो अब्दुल्ला बिन उबई के साथ घर वापस आ गए। अब हुआ क्या, आप ज़रा इमेजिन करें, लोग इकट्ठे निकले घर से, चले पिकनिक के लिए निकले, ख़ानदान के 100 लोग निकले, 10 मील दूर गए, तो उसमें से 33 लोगों ने कहा कि लगता है कि ये कोई अच्छी पिकनिक नहीं है, मौसम ख़राब है, देर से, वो कहते नहीं वापस चलते हैं। हाँ, अब क्या हुआ, पलटा है, उन्हें कहा हम जाते हैं। अच्छा, बाकी 70 ने कहा नहीं जी, अब आ गए हैं तो जाना है, सामान पास है, खाना पास है, अब जो हो गई वो हो गई, फैज़ आज़म तफा तवक्कल अल्लाह वाली कैफियत, वो चल पड़े। अब हुआ क्या कि वो वहाँ है, अब होता क्या आपको पता है, जो पीछे रहते हैं ना वो फिर अलग अलग अपने घरों में नहीं रहते, वो क्या कहते हैं, चलो फिर आओ सारे एक ही जगह बैठते हैं, वहाँ भी बैठना था यहाँ बैठते, क्योंकि घर के काम तो ख़त्म करके आए होते हैं। अब होता है वो किसी एक के घर में जहाँ बहुत जगह होती है वहाँ बैठ जाते हैं। वक़ादू वाली कैफियत हो गई। अच्छा आप क्या हुआ? अब तबसरे। भला आप कहाँ पहुँचे होंगे? लो ज़रा मैं फ़ोन करके पूछूँ, बारिश तो नहीं हो रही? अच्छा भीगे तो नहीं? अच्छा उसके बाद पता क्या होगा? दो चीज़ें होंगी। अगर वहाँ वाले कहना बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़े की बात, तो इनको थोड़ा सा गिल्ट होगा, कहेंगे हाय कैसी। फिर वो 30 आपस में लड़ेंगे, तूने कहा था, तेरी बात थी, मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली, तुम बच्चे माओं को कहेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे। ये कब है जब वहाँ वालों को बड़ा मज़ा आ रहा होगा? ये जलें कोड़ेंगे, लेकिन तबसरे तो करेंगे। अब दूसरी सूरत है, फ़ोन मिलाया, क्या हाल है उधर, कहते हैं बस कुछ ना पूछो, हाल ख़राब है, बारिश हो रही है, ये वो। अब बैठ के ये क्या करेंगे? तबसरे, लऊ अताऊ नमा कुतिलो। देखा, मानते ना हमारी बात तो ना मरे जाते। ये हैं वो तबसरे, वो लोग जो खुद मैदान के गाजी नहीं होते ना, वो घर बैठ के तबसरे करते हैं, ड्राइंग रूम्स में तबसरे। कुछ लोग तो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं और कुछ घर बैठ के उनके ऊपर तनकीदें कर रही हैं, रोज ही चली जाती हैं, क्या जरूरत है, क्या मिल रहा है? ना जाते ना मारे जाते। ये उनके तबसरे हैं उन लोगों के बारे में जो चले गए वहां, और वहां उन पे उनको तकलीफ हुई, और आज ऐसे तबसरों को तो लीगल कर लिया गया। मैं तनकीद नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होता था, अब होगा कि नहीं, और वो क्या है, तबसरा, हालाते हाजरा पे तबसरा। हाँ, इलेक्शन हो रहे हैं, थोड़ी देर उसके नंबर्स वगैरह बताते हैं वोटिंग, फिर उसके बाद अब तबसरा, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन क्या करेगा वो करेगा। ऐसा ही तबसरा जो है ना, असल में इस्लाम के अंदर नापसंदीदा है। अब यहाँ दो बातें नोट कीजिएगा, एक वो तबसरा है जो प्रैक्टिकली उस काम में जाने वाला कर रहा है, मसलन आप कोई काम कर रहे हैं, फिर आप बैठते हैं, मिसाल देती हूँ कि जैसे हम एक फंक्शन करते हैं ना, सूरह बकरा पूरी हमने फंक्शन किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, सब बैठे थे, हमने कहा अच्छा अभी बताएं आज का फंक्शन कैसा रहा, हाँ क्या हुआ क्या किया, ये तबसरा है ना। इससे क्या होगा कि हम गलतियों को रिपीट ना करें, अच्छी बात जिन्होंने अच्छा काम किया उनको अप्रिशिएट करें, ठीक है ना। ये तो तबसरा है बेहतरीन, काम करने वाले अपने कामों को निगोशिएट करते रहें, उन पे गौर करें, बहुत अच्छे नतायज आएंगे। लेकिन एक वो तबसरा है जो वो लोग करते हैं जो काम नहीं कर रहे होते हैं, और हमारे यहाँ कहते हैं दानिश्वरों के तबसरे, फलां के तबसरे। अफसोस की बात है कि आज इस्लाम को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नाम दे दें, डिग्री दे दें बड़े बड़ी, लेकिन जो वो इस्लाम पे बातें कर रहे होते हैं ना, वो नाकाबिले बयान होती हैं। ऐसे लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए तबसरे की, कमेंट्री करना भी कहते हैं ना, बाज़ दफ़ा मैंने सुनी हुई है, बहुत पहले मैचेस पे तबसरा होता है, उसने छक्का मारा, उसने यूं किया, उनको आगे जाना चाहिए तो उनको पीछे जाना चाहिए, वो हम सुन रहे होते हैं, वो खिलाड़ी नहीं सुन रहे होते। तो यहाँ असल में इस चीज़ को बताया कि अल्लाह के बंदो, शिकस्त होनी थी हो गई, तुम क्यों दिल जलाते हो, अपना भी और उनका भी। असल चीज़ ईमान की दौलत है, वो लोग जो ईमान की दौलत पा के वहाँ शहीद भी हो गए, तुम उनको क्यों बुरा करते हो, तुम क्यों आज ऐसी बातें करते हो कि जिससे लोगों की हिम्मत टूटे, लोगों के हौसले टूटे। तुम्हें मौत से इतना डर लगता है तो कुल फदराउ अन अनफुसिकुमुल मौत, जो अपने नफ्सों से मौत को हटा दो, इन कुंतुम सादिकीन। तुम कहते हो लऊ अताऊ न मा कुतिलु, ना जाते ना मारे जाते, तो जाओ फिर जब तुम्हें घर में बिस्तर पे मौत आएगी तो फिर तुम उसको हटा लो। खुलासा क्या हुआ पूरी बात का, यहाँ पे हमारा सबक पूरा होता है कि खुलासा क्या है, कि जो किरदार के गाजी होते हैं ना, बल्कि इसको अपोजिट कहूँगी, गुफ्तार के गाजी किरदार के गाजी बन ना सके। एक शेर है जिसका मुझे आता नहीं है लेकिन मफहूम याद है, कि मन अपना पुराना पापी, कुछ इस तरह का है, बरसों में नमाजी बन ना सका, ए मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। खुलासा क्या है कि जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है, चलते जाइए चलते जाइए। आप पढ़ रहे हैं ना, कभी आपके पूरे नंबर भी आएंगे इंशाल्लाह ताला, कभी थोड़े कम भी नंबर आएंगे, कभी आप फेल भी हो सकते हैं, गम ना करें, बस चलते जाएं चलते जाएं। जो चलेगा ना भी मंजिल पे पहुंचा, तो जान जब देगा तो वो उस रास्ते में होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक दे, लेने वालों से ज़्यादा देने वालों को होती है, तो अल्लाह ताला हमें सही मानों में इसका हक अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين